சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஆஜ் கா விஷய ஹை கி அப்னா தக்தீர், ஊஞ்சா தக்தீர் கைசே பனாயே. சாரே கலப் மே சங்கம் யுக எக் ஐசா சமய ஹை கி ஹரேக் மனுஷ்ய ஆத்மா அப்னா தக்தீர் ஜித்னி ஊஞ்சி சாஹே உத்னா பனா சக்தா ஹை. க்யூ கி சாரே கலப் மே இஸ் ஸ்ருஷ்டி கா ஜோ பாக்ய விதாதா ஹை பரம்பிதா பரமாத்மா, உஸ்கா நாம் சத்யம் சிவம் சுந்தரம். சத்ய ஹை வோ ஸ்வயம் ஆகர் பிரஜாபிதா பிரம்மா முக் சே பச்சோ கோ ஜ்ஞான் தேதே ஹை கி அப்னா பாக்ய கைசா பனாயே. சாரே கலப் கே அந்தர் ஏக் ஹி சமய ஹை சங்கம் யுக். க்யோ பாக்ய விதாதா ஸ்வயம் ஆதே ஹை और भाग्य बनाने की विधि बताते हैं. तो वो कैसे बताएंगे? तब कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब. तो पढ़ाई चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ ततास्तु करके वाइब्रेशन से नहीं, पढ़ाते हैं. तब कहते हैं सत्संग से सदगति होती है. अगर सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम कर्म पहले भी करते थे, आज भी कर रहे, कल भी करेंगे, लेकिन जो कर्म पहले करते थे वो आज ज्ञान सुनने के बाद समझने के बाद हमारे कर्मों में परिवर्तन, आचरण में, बोल में, चलन में परिवर्तन चाहिए. सिर्फ ज्ञान सुन लिया, अगर हमारी चाल जो कल थी वो आज भी वही है तो क्या कहेंगे? ज्ञान सुनने के बाद हमने सत्संग से सदगति किया कि जैसे थे वैसे रह गए कि और भी दुर्गति हुई? सत्संग सुनने से नहीं, सुनने के बाद समझ में आना चाहिए. तो शिव बाबा ने आके हमको क्या सिखाया सुनाया कि बच्चे सारे कल्प के अंदर हरेक मनुष्य आत्माओं को तीन चीजें चाहिए और इन तीनों में संपन्नता चाहिए, भरपूरता चाहिए. तो ये तीनों कैसे मिलेंगे? ऊपर से तो शिव बाबा नहीं लेके आएगा. उसने कहा मैं निराकार हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं भाग्य बनाने की विधि बताता हूं. तो सबसे पहले क्या चाहिए? निरोगी काया. ये तन, इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए. तो बीमारी क्यों आ रही है? निर्मल मन चाहिए. जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे. कोई भी गलत सोचना चाहता नहीं है, लेकिन गलत न चाहते हुए व्यर्थ विकल्प आते हैं. कहां से आते हो? फिर क्या चाहिए? और धन चाहिए, धन संपत्तियों से भरपूर. ये तीनों कहां से आएंगे? कलयुग और स्वर्ग में यही अंतर है. कलयुग में किसी को बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है, किसी के पास इतना धन है घर में खाने वाले कोई भी नहीं है, किसी के पास खाने वाले इतने हैं लेकिन धन ही नहीं है. इन तीनों में इम्बैलेंस है, एक है तो एक नहीं है. तो इन तीनों को समान कौन करेगा? तब भाग्य बनाने वाला जो भाग्य विधाता सत्यम शिवम, सत्य है उनका नाम शिव है, हम शिव बाबा कहते हैं. बाबा ने आज कहा मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं, पढ़ाता भी हूं, वरदान भी देता हूं. तो पढ़ाने के लिए ज्ञान देता है. तो रोज हम जो फुल्ली सुनते हैं, सुनते जरूर है, आधा कल्प से हमारे अंदर एक आदत बनी है सुनना है, और वहां छोड़ के चले जाते. फिर ऐसे करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आप कहेंगे हम सुनते हैं याद ही नहीं रहता है, तो उपाय क्या है? आपको नहीं कि हम सारे कल्प चल के आए हैं, जो यहां बैठे हुए बाबा के बच्चे है वो अभी के नहीं है, बीच में आए हुए नहीं है, शुरू के है. सारा कल्प चल करके अंत में बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए आए हैं। क्यों आए हो? बाबा से मिलने के लिए। बाप आकर के बच्चों को मिलकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य देता है। पुरुषार्थ आपको करना है, हर एक अपने पुरुषार्थ के अनुसार। तो वो क्या कि कर्म हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। माता एक घर में खाना कल भी बना रही थी, सब्जी काटती थी, आज भी कर रहे हो। कर्म छोड़ो नहीं कहा। सबसे नंबर वन गृहस्थ आश्रम है भारत में। नंबर वन शुरू से राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, सन्यास धर्म आधा कल्प के बाद आया है नंबर वन गृहस्थ। लेकिन गृहस्थ के पीछे एक शब्द है। क्या शब्द है वो? पवित्र गृहस्थ धर्म। ये पवित्र एक शब्द चला गया। क्यों? गृहस्थ अभी भी है तो उसके पीछे एक शब्द चाहिए। उसकी कमी क्यों हुई? कि हम स्वयं को भूल गए, शरीर समझ के चलने लगे। शरीर समझ के, शरीर माना पांच तत्व है, उसके पांच गुण है। अग्नि आज भी गर्म है, सत्युग में भी गर्म होंगे। पानी आज भी ठंडा है, सत्युग में पानी गर्म होगा, ठंडा ही होगा, उसके गुण है वो। तो इस शरीर को चलाने वाला कौन? वो स्वमान, वो स्मृति। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का पवित्र बच्चा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, ये एक स्मृति में अगर आता है अच्छी तरह से, आज भी हर गृहस्थ में, हर परिवार में वो पवित्रता, वो स्वच्छता, वो शांति आज भी हो सकता है। सिर्फ एक शब्द ऐड करना है कि मैं कौन। हम संसार में हैं, बच्चे हैं, पति है, बहू है, सास है, ये कौन है? ये भी सभी शिव बाबा के बच्चे हैं और किसी के नहीं है। अगर ये बुद्धि में, तब कहा ज्ञान से सद्गति। अगर ज्ञान नहीं है तो सद्गति नहीं है, कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। न चाहते हुए मुख से ये पांच तत्व काम करेंगे ही, नहीं करना चाहिए संभव नहीं है। तो इस पांच तत्वों को के ऊपर अधिकार किसका है, कौन चलाता है? हाथ अपने आप नहीं हिलता है, मन में पहले विचार आता है फिर हाथ उठता है। तो मन आत्मा पहले। तो अगर ये स्मृति अच्छी तरह से बुद्धि में बैठ जाए, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान जो सत्यम शिवम सुंदरम उसका संतान हूं, वो कैसा है? पवित्र है। वो क्या कहता है? तो उसके कहने अनुसार, उसको कहते श्री मत, उसके मत के अनुसार, ज्ञान के अनुसार अगर आप संसार में आज चलते हो तो वो कर्म हमारा तकदीर बनाता है। आज बाबा ने कहा हमारा परिवार है, इस परिवार के अंदर एक जन्म का नहीं, एक जन्म के मां बाप नहीं, एक जन्म का परिवार नहीं, मिनिमम बाबा ने गारंटी दी 21 जन्मों के लिए, सारा कल्प के लिए है, कम से कम 21 जन्मों तक है। लेकिन ये स्मृति चाहिए, ये पति, ये बच्चे, ये आज ही नहीं है, ये भगवान के बच्चे। इसलिए कहते हैं हमारे पास बाबा कहता है, क्या कहता है? वन गॉड वन फैमिली। दो फैमिली है? दो है, एक ही है सभी का। किसी को पूछो क्या बताएंगे? मेरा बाबा। नहीं, इनका बाबा अलग है, नहीं मेरा ही कहेंगे ना। तो हम सब कौन हो गए? वसुधैव कुटुंबकम, कहते एक परिवार, वन गॉड वन फैमिली। मेरे अगर हां किसी को परिचय देते हो, हां ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, परिचय के लिए। नाम कितना दिन के बाद मिला? 12 दिन के बाद। पति कब बन गया आपका? बच्चे कब बन गए? ये बहू कब आई? तो पहले कौन थे ये? ये अगर एक पाठ यहां से, इस भट्टी से लेके जाओ घर में, संसार में, सब समस्या का समाधान एक ही चीज है। ये करो वो करो, बहुत स्वमान है। एक ही स्मृति चाहिए, ये मेरा पति नहीं, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये मेरा बेटा नहीं, ये भगवान का बच्चा है, ये मेरी बहू नहीं है, ये मेरी लड़की नहीं है। ये समझ में अगर आता है अंदर, समझ बोलने के लिए परिचय दे दो जरूर, कोई पूछेगा ये कौन, उनको जरूर मेरा भाई ऐसे नहीं बोलना, मां को देखे मेरी बहन ऐसे नहीं बोलना, हां मेरी माता है, मेरी बहू है, परिचय देने के लिए नाम डाल दे। तब कहा ये ज्ञान, ये बुद्धि में अगर अच्छी समझ में आया, उससे सतगति है। उसके साथ फिर संसार में हरेक के अपना स्वभाव, संस्कार, कर्म अपने अपने हैं। देखो एक ही शरीर का ये हाथ है, सभी अंगुलियां एक जैसे नहीं है, एक बारीक है, एक मोटी है, एक लंबी है, सभी चाहिए। सभी राजाएं बन जाए चलेगा, तो प्रजा कौन बनेगा, दास दासी कौन बनेगा, खाना कौन बनाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, कपड़े कौन धोएगा, ये सब चाहिए, ये समझ चाहिए। इसलिए आप देखना महाभारत के अंदर याद या अपने को सीखना, अपने लिए यूज करना। ज्ञान शास्त्रों में बहुत कुछ बताया, वो सुनने की कहानी नहीं, अपने जीवन में यूज करने के लिए। आज ये आज महाभारत चल रहा है। तो जब भगवान आया था, देखो इंद्र सभा में सारे पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह बैठे, सारे परिवार के बीच में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है। किसी परिवार वाले ने उठकर द्रौपदी को मदद किया, दुशासन को किसी ने रोका, भीष्म पितामह जैसे थे तो भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो द्रौपदी ने चिल्लाया नहीं, भगवान को याद किया। श्री कृष्ण आए, आकर के द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को रोकना चाहिए कि नहीं, आप बताओ, सोचो। अगर आप संसार में क्या कहते हो, अगर कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ बोलता, पहले आप चुप हो जाओ, ऐसे करते ना, पहले आप, पहले मैं नहीं, उसको पहले ठीक करना है, उसको सुधारना है, उनको चुप ठीक करना है। नहीं, देखो भगवान भी आए, गीता के अनुसार दुशासन को कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करता रहा। हाँ, द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी को मदद किया। आप भी, आपके संसार में कलह, क्लेश, दर्द, दुख, समस्या, विघ्न, परिस्थिति, पेपर, ये सब आएगा, ये मेरे कर्मों का फल है। आप कहेंगे मेरे कर्म कैसे, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, आप कहेंगे मुझे कोई बीमारी नहीं, फिर भी चेकिंग करके देख लो, तो वह तुरंत एक्सरे निकाल के आपको दिखाता है, शुगर कितना है, हार्ट के आर्टरीज कितनी ब्लॉक हुई है, सब कुछ दिखाएगा। क्या यहां दिखा सकते हो पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा, महात्मा, कौन सी आत्मा हो? आज बाबा ने तो कहा यहां तो कोई महात्मा नहीं है, है ना। तो आप पूछ लो, अपने आप को देख लो, मुखड़ा देख ले प्राणी, अरे अपने आप को देखो, मैं कौन सी आत्मा हूं, देख सकते हो? हां देख सकते हो। जब रात को आंखें बंद करके सोते, आंखें खुली है तो दूसरों को देखते हो, पर दर्शन, स्वदर्शन करना चाहते हो, आंखें बंद करके रात को जब सोते हो, स्वप्न कहां से आते हैं? दिन में ये माता जी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसे कहते ना। जब रात को आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कहां से आते हैं? और आप में से कोई भी एक भी बताओ, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा, उसका नाम है कर्मातीत आत्मा, उसका नाम है फरिश्ता। फर्श इस धरती के इस पांच तत्वों से मैं रहकर के वे कर्मों के संस्कार नहीं, फरिश्ता, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तो एक, ऐसा कोई है? देख लो, आज से एक महीने मिनिमम, बाबा ने तो मैक्सिमम छह महीने कहा, जो एक महीने तक एक भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं, ऐसा पुण्यात्मा है? एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई है? तब कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, इस भारत में सब अधर्म हो गए, सबकी धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गए, तब स्वयं भाग्य विधाता सहज तरीका बताता है। कोई मेहनत नहीं, खाना नहीं खाओ, दो सारे रात जगो, नहीं कुछ नहीं करना, सिंपल गृहस्थ में रहते हुए। तब बाबा कहता है सहज राजयोग, क्योंकि जब तक, क्यों बता रहा हूं ये, जब तक आप महसूस नहीं करते हो मैं बीमार हूं, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। घर में दवाई है, नहीं लेंगे आप, जब तक दर्द नहीं होता है। तब कहते महसूस करने के बिगर परिवर्तन संभव नहीं है। तो मुझे क्या परिवर्तन करना है? डॉक्टर के पास क्यों गए हो आप? दर्द मिटाने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए गए, डॉक्टर का दर्शन करने नहीं गए हो। तो शिव बाबा के पास क्यों आए हो? पूछ लो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए हो? अपने आप से पूछता, हम इस भट्टी में क्यों आए, क्या चाहिए आपको? बाबा ने एक ही कहा, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं। ये शिव भगवान, शिव बाबा कौन है? ये सोना हीरा कुछ नहीं देता है, सिर्फ एक ही काम करता है, कहा मैं पतित आत्मा को, है ना? तो पहले देख लो मेरे अंदर पतितपना है, हां मुखड़ा देख लो, स्वप्न बताता है। अगर ये स्वप्न आते कहीं से नहीं आते हैं, आत्मा ने जब शरीर में जन्म लिया, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड मैंने जो जो कर्म किया, किसी को पता नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक शब्द ये भी सीख के जाना, याद रखना। हां सामने वाला बहुत दुख देंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत गलत करेंगे, उनका धर्म कर्म है। मेरा धर्म कर्म क्या है? वो मुझे करना है, जो मैं करता हूं। आप कुछ करेंगे वो मेरे अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं जो कर रहा हूं इस शरीर में रहकर, वो मैंने कुछ गलत बोला, गलत सोचा, गलत देखा, गलत कर्म किया, कोई भी करो, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। तब उसको पाप आत्मा, पुण्यात्मा, देव आत्मा कहते हैं। ये पाप आत्मा पुण्य आत्मा किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया किसी को ऐसा? नहीं, ये एक शब्द भूल गए हम, कौन देखता है? किसी झूठ बोल दिया किसको पता है? कौन देखता है? शिव बाबा कहां देखेगा? कैमरा कहां लगा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी ये काम नहीं करता है देखने का। आप हमारे अंदर ही ऐसी व्यवस्था है, आत्मा ने शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा कुछ भी कर्म करो, ये अच्छी तरह से सिखाना अपने आप को, कि हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है। और चाहो या नहीं चाहो, न चाहते हुए जो अंदर गीत भरा वो आवाज आएगा। आप कहेंगे ये अविचार क्यों आ रहा है, ये व्यर्थ विचार कहां से आया? कहीं से नहीं आता है, मैंने भरा हुआ है। ऐसे मेरे जीवन में ये दुख, ये समस्या, ये बीमारी क्यों आई? कहीं से नहीं आई है, मैंने किए वे कर्म। पहले स्वप्न में बताता है, फिर मन में विचार आता है, फिर कर्मों में। बच्चा जन्मते ही देखो लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब, बीमारी, न चाहते हुए एक्सीडेंट हुआ, न चाहते हुए कोई कुछ दुख देता है, मैंने कुछ किया ही नहीं, अब भी नहीं किया, पहले का कर्म है। तब बाबा मुरली में कहता है बच्चे बहुत जन्मों का कर्मों का बोझ है, उसको उतारना है। और सहज रूप से मेहनत में एक ही दिन नहीं जाएगा, संसार में रहते हुए कर्म करते हुए सब कुछ करते हुए एक काम करना, क्या? बहुत नहीं, रोज मुरली सुनते हो, सुनो, सारी मुरली याद नहीं रख सकते हैं। मुरली में से एक भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं, दो बूंदे भी नीचे, एक मुरली के पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगा। ऐसे नहीं वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, और कुछ लेना चाहिए, नहीं, जो आपको अच्छा लगा। आज बाबा ने ये मुरली मेरे लिए कहा, मुझे इसका आज ही अभ्यास करना चाहिए। एक शब्द याद रखो, कम से कम जो लिख सकते हैं लिख करके रखो। शरीर को तीन दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को भी तीन दफा चाहिए। सवेरे मुरली क्लास के बाद जाके नाश्ता करते हो, दो हाथ है, ये हाथ शरीर को खिला रहा है, ये हाथ, हाँ मुरली लिख के रखी है, एक शब्द पढ़ो और नाश्ता करो। याद किसी को नहीं रहता है। दिन में खाना आते ही बाबा की याद में खाना खाओ। याद क्या करेंगे, अरे बाबा ने आज क्या सुनाया था, क्या होमवर्क दिया था, लिख के रखा है, पढ़ो खाना खा लो। रात को भी पढ़ो खाना खा लो, इतना ही काम करना है। और एक काम करना उसके साथ, सारे दिन में कोई भी मिले, बच्चे पति परिवार में किसी न किसी को आज के मुरली के पॉइंट दान करना चाहिए, मुख से वर्णन करना चाहिए, तो संस्कार बनता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। एक दफा आपने सुना लिखा सारा दिन याद नहीं रहेगा, देखना आप करके। अपने आप को भी पढ़ाया, दो तीन दफा अपने आप को पढ़ा तो भी याद, रात तक याद नहीं रहेगा। जरूर सवेरे से शाम तक एक दो तीन चार जितने को, अगर बाबा ने इतना तक कहा कोई मिले नहीं आज, जानबूझ के किसी को फोन करो और बताना माताजी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, इसमें आपको 50 रुपया एक महीने में फोन करने के लिए खर्चा होगा, लेकिन 50 जन्मों का कमाई होंगी, एक का पदम गुना। अगर 50 रुपया मोबाइल चार्ज करने के लिए और किसी में खर्चा करते हो उससे कोई फायदा नहीं। ये जो मुरली के पॉइंट सुनाने के लिए आपने खर्चा किया 50 जन्मों के लिए, एक का पदम गुना। तो अगर ऐसा करते हो तो बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा हुआ है। किसी को देखते ही मन में गलत विचार आता है, नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं आएगा, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं बाबा ने कल कहा था ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुद्धि मन को समझाती है, तब कहा ज्ञान के बिगर ये मन शांत नहीं होगा, मन स्वच्छ नहीं होगा। तो मन को शांत स्वच्छ करना चाहिए, कौन करेगा, अपने आप होगा। तो बुद्धि, बुद्धि जो ज्ञान सुनते हो एक एक शब्द, 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके अंदर भरे हुए हैं, रोज एक एक बूंद, और वो सवेरे दिन में शाम को अपने आप को पढ़ाओ। अगर ये काम करते हो तो देखना, बाबा ने कहा बच्चे भाग्य बनाना चाहते हो, अच्छे कर्म करना चाहते हो, सामने वाला दुख देता है, गुस्सा करता है, परिस्थिति आएंगी, मन कहेगा नहीं, आप चुप रहो, आप नहीं बोलो, शिव बाबा देखता है, ये भगवान के बच्चे हैं, बाबा को बताओ, बाबा आपने कहा चुप रहो, आप इस बच्चे को देख लो। तो बाबा ने कहा हिम्मत ए बच्चे, जैसे देखो गायन है, मीरा ने किसको बुलाया, कौन आया, ये गायन किसका है, आपका ही। आज आपको करना है, संसार में अगर शांति चाहते हो, अपना कर्म श्रेष्ठ करना चाहते हो, सामने वाला गुस्सा करेगा, गलत शब्द बोलेगा जरूर, कितना दुशासन ने कितना किया तो भी भगवान ने उसको रोका नहीं, दुशासन तुम चुप बैठो, उसको रोका नहीं। गलत कर्म करने वाले भी चाहिए इस संसार में, हरेक को अधिकार है, चाहे अच्छा करो चाहे गलत करो, दोनों चाहिए, नहीं तो सेवा करने वाले दास दासी कौन बनेंगे, कपड़े कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, सभी राजा बन के बैठ जाए, बाकी कर्म कौन करेगा। तब बाबा मुरली में कहता है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ की विधि बताता है, आप सोच लो मुझे नंबर वन में आना है, क्योंकि बाबा ने दो दिन पहले कहा था बच्चे ये रेस है, ये योग याद की रेस है, इसमें नंबर वन नंबर टू एक प्रजा भी चाहिए ना, रॉयल फैमिली वाले भी चाहिए, राजा भी चाहिए। नंबर वन, जिसके बुद्धि में ज्ञान है, परिस्थिति आती है, समस्या आती है, विघ्न आते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप इधर से बाहर गए, साधारण देख लो, आपका चप्पल किसी ने पहन लिया तो क्या करेंगे आप? आपका चाहे अपने आप को देख लो, मेरे आपके मन में क्या विचार चलेगा? हाँ, कोई अर्जा नहीं, बाबा के बच्चों ने लिया ना, और कोई दुनिया वाला बाहर वाला आके तो नहीं लेके गया, कोई अर्जा नहीं, मेरे बाबा के बच्चों ने पहन लिया, बाबा इस आत्मा को सदा सुख दे दो उसे, है ना। शुभ भावना कहते हैं हम, आप पूछ लो मन में शुभ भावना क्या, किसने पहना मेरा चप्पल? मेरा ही बाबा का बच्चा है, रावण का बच्चा तो नहीं आया इधर, है ना, और कोई नहीं, बाबा आपके बच्चों ने पहन लिया, को अर्जा नहीं, बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगे, उनको सुख मिले, हम खाली पाव जाएंगे, को अर्जा नहीं। और बाबा उसको आपको देखना, अपने आप आपको देखकर अपने आप चप्पल लाके देगा। ऐसा हुआ इधर, बाबा के कमरे में नए बूट पहन करके एक आया, कोई पहन के गया और वो खाली पाव जा रहा था, किसी ने देखा, अरे ये क्यों, जरूर इसका चप्पल किसने पहना है, तुरंत ला करके उसको दे दिया। तो उसने पूछा, आपको किसने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैंने आपके देखा, आप खाली पाव जा रहे हैं, जरूर कुछ हुआ है। तो बाप बच्चों पर नजर रखता है, संभाल करता है, सिर्फ मेरी भावना। अगर उसी समय आपके मन में, अरे कौन है ये, बाबा के बच्चे ऐसे है वैसे, गलत सोचो, क्या होगा? मेरा ये मन खराब होगा। तब कहा, ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। इसलिए बाबा ने आज कहा कि दान भी किसको करना चाहिए। तो जो आप चाहते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, शरीर को कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो भाग्य कैसा बनाएं? तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया। बच्चे, बाबा कुछ नहीं देते, बाबा ऊपर से दवाई नहीं भेजेगा, ये तन ईश्वरीय विश्वविद्यालय यज्ञ में, ये अविनाशी रुद्र यज्ञ है, इसमें स्वाहा करो। अर्थात सेंटर में, ये यहां आते हो, सेंटर में जाते हो, तो कोई भी दिन में सवेरे से रात तक 24 घंटे में एक मिनट भी इस यज्ञ की सेवा करो, तो ये यज्ञ निरोगी काया वरदान देगा। एक का पदम गुना, एक मिनट अगर आप सेवा करते हो, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान शुभ बने देगा, ये यज्ञ देगा। तो आप पूछ लो, आपके पास 24 घंटे हैं, तो ये तन किसकी सेवा में लग रहा है? और जब बीमार हो, कहते बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, आप बीमार करो और बाबा ठीक करे, बाबा ने व्यवस्था बताया, बच्चे 24 घंटा संसार में रहो, 20 घंटा 22 घंटा संसार की कर्म सेवा करो, लेकिन एक मिनट कम से कम, एक बूंद, एक मिनट भी इस यज्ञ की, इस तन के द्वारा सेवा करो, तो ये यज्ञ निरोगी काया वरदान देगा। फिर बाबा ने कहा, धन आप लेके नहीं आए थे, न लेके जाएंगे, तो धन आपका नहीं, भगवान ने दिया है, उसकी सेवा में लगाओ। कितना लगाना चाहिए? तब आज बाबा ने कहा, दान देते समय सोचना चाहिए, देखना चाहिए, अगर गलत व्यक्ति को दान दिया, अगर उसने दुरुपयोग किया, उसका भी फल आता है, है ना। पात्र को देख के दान देना चाहिए। तो कैसे पात्र को देखें? देखो रामायण में कहा, सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, श्री राम की धर्मपत्नी थी, उनको पता नहीं चले रावण है कि साधु है, हमको कैसे पता चलेगा ये कौन व्यक्ति है सामने वाला? तो बाबा ने परखने की शक्ति दी है, आपके पास है तो देख लो। आज भी संसार में आपके सामने कोई भी आएगा, कैसे परखे हम उसको, ये अच्छा व्यक्ति है गलत व्यक्ति? कोई सब्जी बेचने के लिए आता है, कोई और किसके लिए आता है घर में, तो ये व्यक्ति कौन है, कैसे पता चलेगा? बाबा ने आपको टाइटल दिया शिव शक्ति हो, है ना, तो शिव ने दीवी शक्ति आपके पास है, पूछ लो, नहीं तो इधर से ले जाओ। क्या एक ही शब्द परखने की शक्ति आपके सामने सहज तरीका है। आपके सामने बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे दृष्टि दे के खाना खा लो, कोई भी मिला दृष्टि दे दो। सिर्फ ऐसी दृष्टि नहीं है, अगर आपके सामने संसार में चलते हो कोई भी किसी प्रकार का सामने व्यक्ति आया, एक काम करना, किसी को देखते ही मन में एक संकल्प रखना, मैं कौन, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये संकल्प करते हुए किसी को एक सेकंड दृष्टि दे दो, अगर सामने वाला व्यक्ति दृष्टि हिलाता नहीं, दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तब समझना इनका दिल साफ है, आराम से बात कर लो। अगर एक मिनट एक सेकंड दृष्टि देते समय ये स्मृति चाहे पहले, ऐसी आंखों की दृष्टि काम नहीं करेंगी, स्मृति तो स्मृति हो देनी चाहिए, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, समझ के दृष्टि देते हो। अगर दृष्टि थोड़ी इधर उधर हिलाते हैं तब समझना दाल में कुछ काला है, इनकी दृष्टि, इनसे व्यवहार सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि के अंदर वो एकाग्रता नहीं, स्वच्छता नहीं है, ये परखने की शक्ति है। आज कलयुग में परखने की शक्ति कैसे आए, सामने बहुत लोग आते हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, ट्रेन में जाते हो कुछ खाना देंगे, सहयोग देंगे, और जाते समय लुट के जाएंगे, तो कैसे परखे। तो बाबा ने, शिव ने आकर के शक्तियों को, शिव ने शक्ति दिया, आज भी बाबा ने कहा बाप आके शक्ति देता है, तो परखने की शक्ति, कोई भी मिले एक ही सेकंड, एक मिनट देखते नहीं रहना है, एक सेकंड बुद्धि में ये स्मृति रहे कि मैं कौन, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। ये स्मृति रख करके अगर आप दृष्टि देते हो, दृष्टि हिलाते नहीं है, तब समझना दिल साफ है, अच्छी तरह से बात करो। अगर एक सेकंड दृष्टि जब देते हो, अगर दृष्टि हिलाते इधर उधर देखते हैं, थोड़ी हिलाई दाल में कुछ काला, इनका ठीक नहीं है, समझ करके चलना। तो कर्म कैसे करना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, सब कुछ बाबा सिखाता है। तन कैसे लगाना चाहिए, कितना सेवा में लगाना चाहिए, धन कितना लगाना चाहिए, अपने आप धन्य। आज कलयुग में एक करोड़पति और एक गरीब किसने बनाया, भगवान ने किसको ऐसा किया नहीं। जैसे आपने बीज बोया है तो संगम पर जैसे बरसात आती है, खेती में एक बीज बोते हैं 50-100 दाना लगते हैं, आज भी ये धरती देती है, तो भगवान भी कहता है। लेकिन यहां एक प्रश्न है, माताएं पूछती, एक प्रश्न, भाई जी हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है, धन ही नहीं है, हम तन से मन से सेवा कर सकते हैं, धन नहीं है, धन कहां से आएगा। आप कहेंगे बाबा हमारे तन धन में, हमारे हाथ में कोई धन ही नहीं, पति हमको देता ही नहीं, बच्चे देते नहीं है, हम 24 घंटा बाबा की यज्ञ की सेवा करेंगे तन से, तो बाबा धन देगा, पूछ ला। अगर आप कहेंगे हम बहुत बुजुर्ग है, ये तन से कुछ सेवा ही नहीं कर सकते हैं, हम बाबा को 10,00,000 रुपए देते हैं, तो बाबा क्या निरोगी काया वरदान देगा। थोड़ा सोचना कि कर्म करना चाहिए तन से मन से धन से, धन भी देना चाहिए मन भी चाहिए, मन निर्मल अपने आप नहीं होगा। उसकी विधि बताया कि मन में आज की मुरली के पॉइंट एक याद है, दूसरा और एक भी है, मन को स्वच्छ करने का तरीका, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता है, नंबर 1 राजयोग है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 पवित्रता क्या है। किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं, लाखों ब्रह्मचारी है। तो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पवित्रता क्या है, नंबर 1 राजयोग क्या है, कुछ भी नहीं है। आपके नजरों के सामने छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, मित्र हो, दुश्मन हो, इसको शास्त्रों में भी कहा अधम ते अधम महापापी हो, बहुत खराब है, तो भी धर्म का मूल है क्षमा दया। क्षमा दया कैसे करेंगे आप, वो नंबर 1 राजयोग बाबा ने सिखाया, वही यहां नंबर 1 पवित्रता है। किससे पर नजर गई, शिव बाबा
ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, इनको शांति की शक्ति दे दो, इनको सद्बुद्धि दे दो, बस इतना ही। कोई भी हो, कितना गरीब हो, करोड़पति हो, मित्र हो, दुश्मन हो, किसी को देखते ही मेरे मन में क्या विचार आया। तो अगर गलत विचार आया तो मन पहला गलत करता है, फिर दृष्टि, फिर बोल, फिर कर्म। हमारे कर्म भ्रष्ट कैसे हुए? पहले मन, तब कहा मन जीत जगत जीत। मन को जीत लो। कैसे जीतेंगे? तो उसकी विधि बताया। कोई कैसा भी हो, किसी पर नजर गई, पूछना, एक दिन अभ्यास करके चेकिंग करो। सबको आंखें बंद करके, हम जंगल में तो नहीं है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ में पति है, बच्चे है, परेशान करते हैं, ऐसे है, बहुत कुछ है। उन सब के साथ रहते हुए भी सवेरे उठते ही बच्चों पर नजर गई, पति पर नजर गई, कौन है? देखते ही शुभ बाबा, ये आपका बच्चा है, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनका कल्याण करो, ये नंबर वन पवित्रता है। गृहस्थ में रहते हुए भी, और नंबर वन बाबा कहते योगदान दे दो, नंबर वन योग है। बाबा ने कहा 8 घंटा ऐसे कर सकते हो सवेरे से रात तक। परिवार में चैरिटी बिगेंस एट होम। देखो ब्रह्मा बाबा ने पहले अपने घर से शुरू किया, पहले बाहर नहीं। बाबा ने करके दिखा, पहले अपना घर, अपनी लड़की, अपने बेटा, अपने वाइफ, अपने परिवार से शुरू किया। तो माताओं की गृहस्थ को आश्रम बनाओ। कैसे बनेगा गृहस्थ स्वर्ग? कैसे बनेगा भारत स्वर्ग? कैसे बनेगा? अपने अपने बनेगा। बाबा ज्ञान देता है, जो करेंगे वो पाएंगे। क्या करना क्या? इधर से जाने के बाद सवेरे उठते ही बच्चों पर नजर गई, पति पर गई, बहू पर गई, सास पर, किसी को नजर गलाते ही घर से शुरू करो। सवेरे उठते ही शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो, इनका इनको सदा सुखी बनाओ। ये दुआएं, ये मन में संकल्प निकले, नहीं मेरा पति ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, ये नहीं। योग उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो कहते हैं, नहीं, उससे भी पहले बाबा को याद, उठते ही बाबा ये आपके बच्चे हैं, नंबर वन पवित्रता है, नंबर वन बाबा की याद है। अगर ये किया, सवेरे बीज बोया, मन स्वच्छ, देखना आप सारा दिन मन स्वच्छ रहेगा। उठते क्या अभ्यास करना चाहिए? किस पर नजर गई? परिवार में है, जंगल में तो नहीं रहते हम। तो ये नंबर वन पवित्रता है। अगर ये है तो मन स्वच्छ है, तो सत्युग में भविष्य जीवन में निर्मल मन। हाँ, ये अभी करेंगे तो फिर उसके बाद का धन, आप कहेंगे मेरे पास धन नहीं, धन क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? अगर आप गेहूं का बीज बोलो, बाबा मुझे चावल चाहिए, आप भोला नाथ हो, जो चाहे कर सकते हो, चावल होगा वो उगेगा। साइंस ने, भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार किया, गेहूं का बीज बोलो और चावल उग जाए? नहीं, जो बोएंगे वो मिलेगा। इसलिए आज देखो, किसी के पास बहुत धन है, किसी के बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन बीमार है, खाने वाले कुछ नहीं, ये क्यों, इम्बैलेंस क्यों? तब बाबा इस संगम पर आके हरेक बच्चों को, बच्चे अपना तकदीर, अपना भाग्य, ये तन को तस्वीर नहीं बनाता है, तकदीर बनाता है। ये लंगड़े शरीर को ठीक करो, काले को गोरा करो, वो डॉक्टर करेगा, बाबा नहीं करता है। बाबा क्या करता है? तद्भाग्य बनाता है, तकदीर बनाता है, तस्वीर नहीं, शरीर को ठीक नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, याद रखना चित्र से। तो बाबा ने बहुत दफा, बच्चे तस्वीर, दुनिया भी कहती तस्वीर नहीं बनाई जाती है, तकदीर बनाया जाता है। भाग्य कैसे बनाए? तो एक पूछ लो, मेरा मन सवेरे से रात तक क्या कर रहा है? किसी को देखते मन में क्या विचार किया? अपने आप को चेक करो, औरों को छोड़ दो, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, हाँ वैसा वो पाएंगे। किसी ने हमें जिम्मेवारी नहीं दिया, पहले औरों को परिवर्तन करो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन है। क्या स्लोगन है? स्वपरिवर्तन, दूसरों का परिवर्तन नहीं, स्वयं को, अपने आप को देखते रहो। मैं इस परिवार वालों को रास्ते पर चलते हुए किसी को देखते ही मेरे मन में क्या विचार आया पूछ लो। हाँ, गलत विचार आया को हर्ज नहीं, बुद्धि के अंदर सवेरे मुरली सुनी है, समझाओ नहीं, इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ ये खराब है, इन्होंने बहुत दुख दिया, लेकिन उनको ठीक करना है ना कि ऐसा रहे। अगर ऐसे रहेंगे हु बहु रिपीट, अगले कल्प में भी ऐसे करेंगे। नहीं, अब भी मिटाना है। शिव बाबा ये बच्चे आपके हैं, इनके अंदर ये गलत आदत है, लेकिन आपके बच्चे, आप इनको सद्बुद्धि दे दो, आप इनको ऐसी शक्ति दे दो, ऐसा ज्ञान आप दे दो। क्योंकि हमारा अधिकार, बाबा ने कहा बाप बच्चों को मदद करने आया है, कुछ देने के लिए आया है, दाता है, बच्चों का भाग्य बनाने आया, इसे सिर्फ देखने के लिए नहीं आया। बच्चे क्या करते हैं, देने के लिए दाता है, तो ले लो, उससे लेकर के सेवा में लगाओ। किसी को देखते ही ये नंबर वन, पहले मन फिर तन, 24 घंटा आपके पास है। हाँ, ऐसे नहीं संसार छोड़ो घर छोड़ो, नहीं, संसार में रहो, घर की पालना करो, परिवार की सेवा करो, सब कुछ करने के बाद 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट सेंटर में जाते हो, कोई न कोई इस तन से सेवा करना चाहिए। इस रुद्र यज्ञ की, ये अश्वमेघ यज्ञ है, इसमें ये तन अश्व को स्वाहा करना है। एक घंटा नहीं हो सकता है, 5 मिनट करो। हां, किसी कारण आप नहीं कर सकते हो तो उसको कहा करो या करवाओ। आप नहीं कर सकते हो, आप व्यंजन ने कहा माता जी थोड़ी सब्जी काट के जाओ, आपको तुरंत घर में जाना है, पहुंचना है, बच्चे वेट कर रहे हैं, पति को ऑफिस में जाना है, ना नहीं करना। हाँ, आपके बाजू में दूसरी माता जी है, माता जी आज आप सेवा करना, कल मैं समय निकाल के मैं करूंगी, आपको व्यंजन ने कहा मुझे बताना। आप ना नहीं करो, क्योंकि भगवान की सेवा है, भाग्य विधाता की, वो आके विधान कैसे सिखाए आपको भाग्य बनाने की, है ना। ये सेवा ना शब्द नहीं करना, आप करो, नहीं कर सकता, हाँ जी दूसरों से कराओ। अभी आप बताओ, धन नहीं है। अभी आपको एक उदाहरण बताओ, आज भी देखो एक कुमार है, उसने 2 सेंटर खोले, एक सेंटर में 5-6 माताएं और एक ही कुमार आता था। आज से 20 साल पहले, इसके पहले वाले ग्रुप में आया था, अभी पता चला इतने साल के बाद मिला। तो बहन जी कहती थी, भाई जी ये कुमार बहुत अच्छा सेवा करता है, रोज, पढ़ा लिखा नहीं, साधारण व्यक्ति, साइकिल से बहुत दूर से आता था, नंबर वन आके बैठता था। बैठते बहन जी आई मुरली सुनाने के लिए 7 बजे, अरे भैया बैठ गया, जाओ पानी भरो, गवर्नमेंट का पानी आता है, 7 बजे भरना है। अभी वो मुरली सुनने आता है, बहन जी ने कहा पानी भरने जाओ, गया। दूसरे दिन सोचा मैं मुरली सुनने जाऊं, बहन जी मुरली सुनने तो देती नहीं, सेवा करो कहती है, क्यों जाना चाहिए, आया है नहीं। और उस जमाने में फोन नहीं था, 1 साल नहीं आया। 1 साल के बाद मिला, अरे आप सेंटर में नहीं जाते हो, भाई जी बाबा कहते मुरली मिस नहीं करो, मुरली भगवान आके ज्ञान पढ़ाता है, और बहन जी पढ़ने नहीं देती है, सेवा करो कहती है, इसलिए मैं जाना ही छोड़ दिया। अरे आपने अपना भी भाग्य बिगाड़ा और भगवान को भी भूखा रखा, आप पानी नहीं भरेंगे तो कौन भरेगा, बहन जी तो सेवा कर रहे बाबा की, तो भाई जी मैं क्या करूं। अरे अभी पूछ रहा हूं, 1 साल तो चला गया। तब उसको कहा, आप कमाई तो करते हो, पैसा कुछ तो है, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, नल के नीचे रखो, गवर्नमेंट का पानी धीरे धीरे आता है, रखो 15 मिनट मुरली सुनो, 15 मिनट के बाद जाके देखो भर गया, पानी भी भर गया और आपने अपने अंदर ज्ञान भी भर दिया, दोनों काम हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। नहीं तो आप कहेंगे भाई जी बाबा ने मुरली मिस नहीं कहा, हम सेवा छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं। नहीं, दोनों कर दिए, युक्ति बाबा बताता है ना, हर तभी युक्ति, इस युक्ति से संसार में मुक्ति है। देखो माताएं आज कहते हमको पति सेंटर में जाना नहीं देता है, क्लास में सेंटर में जाना है, मुरली सुनने जाना नहीं देता है, मना करता है घर में, तो क्या करे, युक्ति है। آپ سویرے اٹھتے ہی بابا آپ کہتے ہو, آپ آئے ہو, یہ آپ کا بچہ ہے, اس بچے کو آپ سد بدھی دے دو. میں کہوں اور وہ آج منع نہیں کرے, گھر والے مجھے منع نہیں کرے, بابا جھٹے دے گا, بابا آیا ہے, وہ بابا کے بچے ہیں, آپ کا آواز نہیں سنیں گے, ہے نا, آپ کا آواز پہنچے گا کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. تب بابا نے کہا شیو کو, شکتیوں کو شیو ملا ہے, شیو کا ہر سیکنڈ یوز کرو. شیو شکتی کمبائن, کمبائن اپنے آپ آ کے نہیں رہتا ہے, ہر قدم میں سویرے اٹھتے ہی یاد کرو بابا آج مرلی سننے مجھے آنا ہی ہے. اور پریوار والوں نے مجھے منع نہیں کرنا چاہیے, پتی نے, بچوں نے, ماں نے, کسی نے منع نہیں کرنا چاہیے, آپ کے بچے, آپ ان کو سد بدھی دے دو, آپ کا شریشٹھ سنکلپ بھگوان کو پہنچاؤ. اس نے کہا کہ میں مدد کرنے آیا ہوں, اس کو بتاؤ. دیکھا آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, ہم بابا کی مدد نہیں کرتے. پہلے من میں وچار آتا ہے مرلی سننے جانا چاہیے, آج جانے نہیں دیں گے, منع کریں گے, ایسے بولیں گے, پہلے نیگیٹو, کیوں کل ایسا کیا تھا انہوں نے, دو تین دن پہلے ایسے کیا, جاتے جاتے آپ کو روکا تھا, وہ یاد پہلے آتا ہے. ہاں آئے گا, نہیں بھی آنا چاہیے, سبھی نہیں کہتا, آنے دو, پھر بھی بابا آپ کہتے ہو بھگوان آیا ہے, میرا تقدیر بھی بنانا ہے, ان کا بھی بنانا ہے. کب کیسے بناؤ؟ آپ مجھے سینٹر میں آنا ہے, بابا سے بات کرو, سمبھو ہے؟ پوچھ لو, کر کے دیکھ لو. تو بابا نے کہا میں بچوں ہر سنکلپ تمہارا سنتا ہوں اور میں کروں گا. ہاں کسی کارن سویرے نہیں ہوا, کوئی ہرجا نہیں, دن میں جب سمے ملتا جاؤ, نہیں دن میں ہو سکتا ہے شام کو جاؤ, تو سمے نکال, سویرے دن میں شام کو گیان سننا ہے. سیوا بھی سویرے نہیں ہو سکتا ہے, دن میں ہو سکتا ہے, شام کو ہو سکتا ہے, جب آپ کے پاس سمے ہے. 24 گھنٹے میں یہ تن بھگوان کی سیوا میں لگانا چاہیے. جیسے ماتا ہی کہتے ہیں پریوار والے گیان میں نہیں چلتے ہیں, پتی بچے نہیں چلتے, ہاں نہیں چلیں گے, لیکن آپ کو چلانا ہے کہ ماتا گرو ہے. کیسے چلائیں گے آپ؟ سہج طریقہ ہے. دیکھو بچے کو جب بتانا, بچے جو آپ جاتے سمے اسکول میں جا رہے ہو, یہ پھول سینٹر میں جا کے بابا کے کمرے میں رکھے آنا. کبھی پتی کو بولو جاتے سمے یہ پھل سینٹر میں دے کے جانا. ان کا پاؤ ہری کے دوار تک پڑے, سینٹر تک پہنچا ہو, اتنا آپ کا کام ہے. پھر ہری شیو بابا ان کو اگر اپنا بنانا ہے تو بنائے گا. بہن جی کو بتا کے رکھو, بہن جی یہ آئے گا نا, ان کو ایک ٹولی دینا, بتانا آپ 2 منٹ بابا کے کمرے میں بیٹھ کے جاؤ, ایک مرلی کے پوائنٹ آپ سنانا, بتا کے رکھنا. آپ کا کام ان کا پاؤ کسی پرکار سے سینٹر تک پڑے پہنچے. بچوں کو بھیجو, کبھی کبھی پتی کو بولو, مانیں گے. ہو سکتا ہے ایسا ایک دم کہو گیان سنو یوگ کرو, نہیں ایک دم نہیں. تب پہلا سنیہی بناؤ, پھر سہیوگی بنیں گے, پھر یوگی بنیں گے. ایک دم گیانی یوگی نہیں بن سکتا ہے. تو ماں گرو کہا, تو ماتا گرو بابا نے کیوں کہا, تو وہ سارے پریوار کو چلا سکتی ہے, بچوں کو بھی چلا سکتی ہے. کتنا بھی بچے اچھے نہیں ہیں, تو ان کا پاؤ سینٹر تک, بابا کے گھر تک پڑے. کیسے؟ مرلی سننے جاؤ, یوگ کرنے جاؤ, نہیں جائیں گے, سیوا کرنے جاؤ, جائیں گے ضرور. یہ پھول رکھے آؤ, یہ پھل سینٹر میں دے کے آؤ, یہ سبزی دے کے آؤ, کچھ نہ کچھ کام سے, کسی نہ کسی پرکار سے سینٹر تک پہنچے. تو ہری کا کام ہے, ہری کے دوار تک پہنچانا آپ کا کام ہے. کیسے پریوار کو چلانا ہے؟ تب کہا گرہست میں رہتے ہوئے بھی گرہست میں رہو, ایسے نہیں سبھی ایک جیسے بن جائے, ہمارے جیسے پتی ہو جائے, ہمارے جیسے بچے ہو جائے, نہیں ایک جیسے نہیں ہوگا. ہاں تھوڑا کچھ, اس لیے سیوا کیسی کرنی چاہیے تن سے. ابھی دھن سے کیسی کریں گے بتاؤ؟ آپ کہتے میرے پاس دھن ہی نہیں ہے, کہاں سے لائیں گے؟ ہاں وہ بھی ایک دھیان رکھنا. سننے میں آتا ہے ماتا سمجھتی ہے پتی مجھے پیسہ دیتا نہیں ہے, وہ گیان میں چلتی ہے, میرا بھی بھاگیہ بنانا ہے, ان کا بھی بنانا ہے. کیسے بنائیں؟ ان کے جیب سے نکالا, اپنے لیے نہیں بابا کے بھنڈارے میں ڈال دیں گے, چلے گا؟ وہ تو دیتے نہیں ہیں, میرا بھی بھاگیہ بننا چاہے, دھن کی سیوا کرنا چاہے, کیسے کروں؟ میرے ہاتھ میں تو نہیں. پتی کا بھی بھاگیہ بننا چاہیے, تو کیا کریں گے؟ ان کے جیب سے نکالا, بھنڈارے میں ڈال دیں گے, چلے گا؟ سوچ لو جو ماتا ہے کہتے چلے گا چلے گا ماتا جی کے ہاتھ اٹھا دے چلے گا کہتے کہ نہیں ہاں چلے گا بھگوان کو ایسے چوری اس کو چوری نہیں کہیں گے نہیں بھگوان کو ایسے نہیں چاہیے کیونکہ آج کی دنیا میں بھی لوگ کرپشن کرتے ہیں اور کہیں گے بھگوان کو دان کریں گے نہیں بابا کو ایسے نہیں چاہیے بچے ایسا بھاگیہ نہیں چاہیے ہاں آپ کو پتی دیتا ہے پیسہ سبزی لانے کے لیے کپڑے لانے کے لیے اس میں سے آپ بچت کر کے بابا کی سیوا میں لگاؤ نکال کر کے چوری کر کے اس کو بھی چوری کہیں گے عادت ٹھیک نہیں ہے بابا کو ایسا نہیں چاہیے سچے دل سے آپ ایک پیسہ بھی ڈالو تو اگر وہ بھی بتاتا ہوں آپ کہیں گے بھائی جی ہمارے پاس پیسے نہیں دھن ہی نہیں ہے طریقہ ہے دیکھو ماتاؤں کے پاس گھر میں اناج ہے سبزی آتی ہے کھیتی ہے دودھ ہے گائے بھینس ہے سینٹر میں بابا کو بھوگ لگانے کے لیے اناج چاہیے سبزی چاہیے دودھ چاہیے بھنڈارے سے بہن جی پیسے نکال کے 100 روپیہ کی سبزی لاتی ہے تو آپ کہو بہن جی آپ سبزی نہیں لانا ہمارے کھیتی میں ہے روز سبزی لا کے رکھ دو تو آپ کا دھن جمع ہو گیا اناج ہے گھر میں اناج رکھے آ جاؤ گھر میں دودھ ہے روز 1 لیٹر دودھ رکھے آ جاؤ نہیں تو 100 روپیہ ایک مہینے میں خرچہ ہوتا ہے بھنڈارے سے نکالنا پڑتا ہے بہن جی کماتی تو نہیں بھنڈارے سے تو بابا کے بھنڈارے میں آپ کا 100 روپیہ جمع ہو گیا طریقہ ہے بھاگ کیسے بنائیں تقدیر کیسے بنائیں ایسے سوچ کے بیٹھتا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں بابا ودھی بتاتا ہے تن کیسے لگاؤ سینٹر میں جاتے ہو 5 منٹ مرلی سنی کچھ صفائی کرو اناج صاف کرو سبزی کاٹ کے دے دو گارڈن ہے گارڈن میں تھوڑا پانی کرو جو آپ کے تن سے ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے کل ایسے نہیں کہنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں تو بابا کہتا ہے بچے ڈرامہ بابا کے سامنے ایک شبد ہے میں بھی کیا کر سکتا ہوں بچے ڈرامہ نمبر وار تو تن دھن اور من یہ تینوں سیوا میں لگائیں گے جتنا ایک کا پدم گنا کسی کارن آپ کو کھیتی میں آپ کو گیہوں بھی چاہیے دال بھی چاہیے سبزی بھی چاہیے نا صرف روٹی ایک ہی کھاتے نہیں رہیں گے ایک ہی سبزی کھاتے نہیں رہیں گے تینوں چاہیے تو کہاں سے آئے گا اوپر سے آئے گا سوچ لو تو تینوں بیج آپ کو بونا ہے سبزی بھی لگانی ہے گیہوں بھی ڈالنا ہے گیہوں بھی چاہیے دال بھی چاہیے اگر کسی کارن آپ نے بویا نہیں میں بیمار تھا کچھ کارن بہت ہے مانگنا پڑے گا تو بھکتی مارگ میں اتنا پوجا پاٹ مانگنا کیوں پڑ رہا ہے ہم نے سمے پر جیسے برسات آئی کھیتی میں بیج بوئیں گے ایک سال کے لیے اناج مل جاتا ہے گھر میں شادی تھی بیمار تھے اس لیے میں سے کھیتی بویا نہیں کس کو بتائیں گے آپ اپنے تقدیر کو کس کو بتائیں گے کون ہے بابا کو کہو بابا اوپر سے بھیجے گا اپنے تقدیر تب اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے تو اس لیے بھگوان آ کے ودھی بتاتا ہے بچے تن من دھن یہ تینوں سیوا میں لگاؤ جتنا لگا سکتے ہو اتنا ملے گا اگر آپ کے جیون میں لکش ہے 84 جنموں تک مجھے سدا سمپن جیون چاہیے بھاگیہ ودھاتا آیا ہے بابا نے کہا بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا ہے جتنی لمبی ریکھا کھینچنا چاہتے ہو اتنی لمبی کھینچ سکتے ہو کوئی بندھن نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کوئی بندھن کسی کو نہیں ہے کسی کو بندھن ہے پوچھ لو آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی منع کرتا ہے بیٹھے بیٹھے یوگ کر سکتے ہو گھر میں اگر کہ سینٹر میں جانے کے لیے منع کیا آپ کو ہرج نہیں بچوں کو بولو بچے جا کے سینٹر میں سے مرلی لے کے آؤ یہ پھل دے کے آؤ کرا سا کرو یا کرواؤ کوئی نہ کوئی رستہ ملتا ہے لیکن پیاس لگنی چاہیے پانی یہاں نہیں ملتا ہے کہاں ملتا ہے وہاں سے لے کے آئیں گے نا کیونکہ پیاس لگی ہے تب پہلے کہا جب تک آپ نے محسوس نہیں کیا ہے کہ مجھے میرا بھاگیہ بنانا ہے اور سارے کلپ میں یہ ایک ہی سمے ہے اس سمے پر آج بابا نے کہا پرانی دنیا پرانا دے سب کا تیاگ کر بہت کچھ آج ادھر شادی ہو رہی ہے آج ادھر یہ ہے ادھر یہ بہت کچھ سنسار میں ہوتا ہے ہاں جہاں تک کر سکتے ہو کرو جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اپنا بھاگیہ بناؤ. نہیں ہم کیا کریں, سنسار ایسا آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ سمے دیکھتے ہو میری وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہی سمے مرلی پڑھو, سیوا کرو. دیکھا میں نے ابھی اس کے پہلے ایک ماتا ہے پریوار میں سینٹر میں جانا نہیں دیتا ہے, وہ اپنی ماں کے گھر میں گئی اور ماں کے گھر سے یہاں آئی. کہ ہم نے ان کو پتا چلے گا نہیں, ان کو پتا نہیں کسی کو. میں ماں کے گھر میں گئی دو دن کے لیے اور وہاں سے ایک دن کے لیے ادھر آئی, نہیں تو گھر والے آنا نہیں دیتے. یکتی ہے, جہاں آپ کے اندر اچھا ہے مجھے اس کی ویلیو ہے, پہچان لیا آپ نے اس کو, کہا محسوس کیا کہ یہاں بھگوان آ کے پڑھاتا ہے. بابا آ کے پڑھاتا ہے پتا ہے؟ کوئی اگر پوچھا ماتا جی کا پوچھیں گے بابا بھگوان کہاں آیا, ہاں پہلے تھا, پہلے آتا تھا برہما بابا کے تن میں, ابھی تو نہیں ہے. ابھی ہے بتاؤ ماتا جی, بتاؤ جلدی. ہاں ابھی کہاں ہے, کہاں دکھائی دیتا ہے؟ کیسے کہیں گے آپ, سبھی نہیں کہیں گے. ہاں ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں, کیونکہ دادی پھر آئیں گے یوگ کرنے کے لیے. ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں, سننا بابا کیسے سنتا یہاں کی, آج بھی جیوت ہے کہانی نہیں. دیکھو ایک پریوار میں پتا جی, بہن اور دو بھائی. بھائی پتا جی 50 سال تک سینٹر میں رہتا تھا. پتا جی نے بہن جی کو سمرپت کر کے بہن جی آج بھی سینٹر چلاتی ہے. دو بیٹے تھے, دونوں بیٹے کو شادی کیا, وہ اپنے سنسار میں تھے اور پتا جی سینٹر میں تھا کہ آج بھی جیوت ہے. 5 سال پہلے پورا پیرالیسس ہوا اور یہاں مدھو شانتی ون میں تھا. بڑا بیٹا ریٹائرڈ ہو گیا, ان کو لگا کہ پتا جی کی سیوا کرنا چاہیے. دونوں بھائی اور بہن مل کر کے دادی کے پاس آئے, دادی پتا جی کی سیوا کرنا ہم لے جاتے ہیں. دادی نے کہا لے جاؤ, لیکن بہن کو ٹھیک نہیں لگا, سینٹر سنبھالتی ہے. پتا جی کو بابا نے 50 سال سے کھانا کھلایا, سب کچھ کیا, مرلی سنا اتنا بھاگیہ بنا رہا, آج وہ بہو کیا کھلائیں گی. لیکن دادی کو کچھ بول نہیں سکتے, چپ رہے. تینوں ادھر سے گئے مدھوبن, گئے مدھوبن میں بابا کے کمرے میں بیٹھے. بابا کے کمرے میں بیٹھ کے بہن نے بابا کو بتایا, بابا یہ میرا پتی پتا جی نہیں, یہ آپ کا بیٹا ہے. آپ نے 50 سال کھانا کھلایا, اس سے سیوا کرایا اور آج ان کو بہو کے پاس گھر میں بھیج رہے ہو, مجھے ٹھیک نہیں لگا. لیکن آپ کا نرنے ہے, وہ آپ مالک ہے, آپ کا بیٹا ہے. اتنا سنا کر کے آ گئے. شام کو یہاں گلزار دادی کے تر میں باپ دادا تھے, تو لاسٹ میں یہاں ویل چیئر پر تینوں کو لے کے گئے درشٹی دیتے ہوئے. اور تینوں بھائی, دونوں پتا جی ویل چیئر پر, دونوں بھائی سب نیچے اتر گئے, بہن جی ادھر ہی بیٹھی رہی, لاسٹ تھا. اور بابا جاتے جاتے بابا نے بلایا, بچی جو نرنے لیا وہ صحیح ہے. ان کو یاد بھی نہیں, سبھی ایسے بابا کے کمرے میں بول کے آئے تھے سویرے, کچھ یاد نہیں. یہاں آنے کے بعد جواب کس نے دیا, کہاں تو بابا, بابا نے سنا, انہوں نے بابا کو سنایا نہیں, تو جواب کس نے دیا, کون ہے سنتا ہے. یہ پریکٹیکل جیوت. وہ پتا جی آج بھی 99 ایئرز, دیکھو بھائی لے کے گیا, بھائی نے 1 سال سیوا کیا اور بھائی نے شریر چھوڑ دیا. بہن کی اچھا تھی میں سینٹر میں رہ کر سیوا کروں, آج بھی 99 ایئرز, آج بھی سینٹر میں بہن لے کے آئی اور پتا جی کی سیوا کر رہی ہے. تو بھگوان دونوں کا الگ اچھا رکھتا. دیکھو بھائی کو بھی ادھیکار تھا, اس کی بھی 1 سال اس نے سیوا کیا, بہن کی بھی اچھا تھی, لیکن سینٹر میں کیسے رکھے, تو بھی آج بھی سینٹر میں ہے. تو کون سنتا ہے, بابا کے کمرے میں آپ جاتے ہو کون سنتا ہے, کس نے سنا. تب کہا بابا بار بار کہتا ہے کہ بچے میں آیا ہوں, کلپ میں ایک دفعہ میں آتا ہوں. کہاں دکھائی نہیں دیا, کہاں آیا. کوئی پوچھے گا کہاں بابا تھا, بہن جی مرلی سنا رہی تھی, کہاں بابا پڑھاتا ہے, کہاں سنتا ہے. ہر ایک کے اوپر بابا کی نظر ہے. بھگوان کلپ میں اس سنگم پر آتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, لیکن جہاں ضرورت ہے, کیونکہ ڈرامہ بھی ہے, ہر ایک بچوں کا سنتا ہے. جہاں ضرورت ہے جو کرنا چاہیے کرتا ہے. ایسے ہزاروں ادھارن ہے, یہ جیوت ایگزامپل. آج بھی آپ پوچھ سکتے, نہیں تو کہانی ہوتی ہے, کس نے کیا دیکھا, کس کو پوچھے. تو بابا سنتا ہے. دیکھو وہاں بابا کے کمرے میں انہوں نے بولا اور بابا نے یہاں جواب دیا. تو کون تھا وہاں مدھبن میں؟ بابا کے کمرے میں جاتے ہو کون تھا ادھر؟ کس نے سنا؟ کہاں ہے؟ تب کا تھا بھگوان پرم دھام میں نہیں سوکشم وطن میں یہاں ہی ہے, ہے نا. تو یہاں تھا اس شریر میں تھے ادھر سے ادھر ہی ہے. تب ہر سال آتے ہیں تب کا ہم بابا کے ملن کے لیے آئے بھگوان سے ملنے آئے. ہر ایک کا آواز سنتا ہے, سنتا ہے کہ نہیں بتاؤ. ہاں جو سمجھتے بابا ہمارا آواز سنتا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ دیکھ لو. سنتا ہے نا؟ ہاں. تو ادھر سے جانے کے بعد سنسار میں کبھی نہیں کہنا میرا پتی میرے بچے مجھے یہ بیماری مجھے یہ دکھ ہے. نہیں بابا یہ سب آپ کا پریوار ہے آپ کے بچے ہیں. اگر سنسار میں شانتی چاہتے ہو اپنے من میں بھی شانتی چاہتے ہو پہلے اپنے من ان کو پر پتی کو دیکھو بچوں کو دیکھو بہو کو دیکھو کتنا پریشان کرتے بچے ناک میں دم کرتے ہیں تو بھی بابا یہ آپ کا بچہ سویرے اٹھتے ہی یہ بچہ ایسا ہے یہ سنکلپ آئے گا بھی نہیں آنا چاہیے ایسا نہیں کہتا آتا ہے کیونکہ بہت پریشان کرتا ہے اٹھتا نہیں اسکول میں جاتا نہیں ہے تو بھی بابا یہ آپ کا بچہ ہے اس بچے کو آپ سد بدھی دینا آپ سمجھانا آپ کے میں آیا ہوں تو من میں پہلے شبھ سنکلپ کیسے کرے وہ چاہیے نمبر ون. پوترتا بھی ہے ایسے پتی کے لیے بھی میرا پتی ایسا ہے تمباکو کھاتا ہے شراب پیتا ہے غصہ کرتا ہے پیسہ نہیں دیتا ہے بہت کچھ ہے تو بھی میرا نہیں بابا یہ آپ کے بچہ ہے. یہ اگر بدھی میں ڈالا آپ کے شریشت سنکلپ ان کے اندر جو برائی ہے اگر آپ کو سمے ہوتا تو میں کہاں نہیں بتاتے اور بھی بتا دیتا تھا آپ کو کہ ہمارے جیون میں میں دیکھتا ہوں سنکلپ کیا کرتا ہے. کیونکہ آج بابا نے کہا شکشا دینے کی بھی سمے چاہیے دیکھنا چاہیے شکشا بھی کب دینا چاہیے جان دان بھی کیسے کرنا چاہیے. کسی کو دان کرو نہیں پاتر کو دیکھو. ادھر سے اٹھ کے جاتے ہو باہر جاتے ہی ماتا جی ملی ماتا جی کہتے ماتا جی آج بابا نے دیکھو بہت اچھی بات بتایا. انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا کچھ بھی نہیں بولا ٹھیک ہے وہ ہرجا نہیں. دوسرے دن ان کو نہیں بولنا کیونکہ ان کی اچھا نہیں ہے دوسروں کو بتانا ہے نا. کس کو سنانا چاہے ایسے سناؤ نہیں نہیں ان کو اچھا نہیں لگتا دوسری ماتا جی کو سنانا دیکھنا ایک دفعہ سنا کے اگر ان کو انٹرسٹ ہے ہاں بابا نے یہ بھی تو کہا تھا وہ بھی ایک سنائیں گی آپ نے ایک سنایا اگر وہ یوگ کی پاتر ہے اس نے بھی سنا وہ بھی کہتے بابا نے یہ بھی کہا تھا اس کے مکھ سے بھی ایک گیان رتن نکلے گا. یہ دان کرنے کی طریقہ چاہیے کس کو سنانا چاہیے کیسے سنانا چاہیے. کوئی سناؤ سنتے نہیں ہے اور کچھ بولتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے نہیں. بابا نے آج ویوستھا بتایا گیان دان بھی کیسے کرنا چاہیے پاتر کو دیکھنا دیکھنے کی بھی ودھی بتایا کس کو سنانا چاہیے دان دیتے سمے پاتر دیکھنا چاہیے تو وہ بھی دیکھ کسی کو دیکھو ایک سیکنڈ درشٹی دینا ایک گھنٹہ نہیں لیکن بدھی میں یہ سمرتی رہے کہ میں کون. درشٹی خالی درشٹی کام نہیں کریں گی شریشت سمرتی والی درشٹی سمرتی کہ میں سرو شکتیوان شب بابا کے بچوں یہ سمجھ کر اگر درشٹی دیتے ہو آپ کے سنکلپ شریشت سنکلپ ان کی بدھی کو استر کرتے آنکھیں ہلتی نہیں ایک سیکنڈ دیکھتی رہتی ہے. تب بابا نے نیم بنایا درشتی دینا دینے کی ودھی بنائی. تو سنسار میں چلتے سمے کلیوگ ہے یہ ہر ایک کا سوبھاؤ سنسکار اپنا اپنا ہے گھر میں بہو ایسی ہے بچے سے ہے لیکن میرا شبد سوڑ کر بابا کے بچے سمجھ میں آیا. تن کیسے لگانا چاہیے من کہاں لگانا چاہیے دھن کیسے لگانا چاہیے. دھن نہیں ہے تو بھی ودھی ہے پریوار والے گیان میں نہیں چلتے ہیں کوئی حرج نہیں زبردستی نہیں کرنا. اور بھی ایک دھیان رکھنا کبھی بھی پتی نے پریوار والے منع کیا ان کے ورد نہیں چلنا ان کو بنا پوچھا آئے تو پھر وہ بہت اینٹی ہو جاتا ہے کہ ہاں پریوار میں گرست بنایا آپ نے ہاں ان کو بتاؤ لیکن من میں یہ سنکلپ رکھو بابا آپ نے کہا آپ بلا رہے ہو یہ آپ کے بچوں کو آپ سدبدھی دے دو उनको पूछ के परिवार को बिगाड़ करके नहीं आना। कितना दिन चलेंगे? फिर उनके मन में गलत विचार चलने का कारण कौन? हम। तो इसलिए कहा कि मन संकल्प शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करती है। मुख से बोलना नहीं, एक दिन बताना मना किया कोई हर्जा नहीं, बाबा अपने आप प्रबंध करेगा, बाबा से बात करते रहो, उनके प्रति शुभ सोचते रहना, बाबा ये आपका बच्चा, आप इनको सद्बुद्धि दे दो। हो सकता है कि कठिन है, हो सकता है। अभी ऐसे करे जब तक दादी आती है 10 मिनट, तो सुना कि गुलजार दादी को सभी माताएं शक्ति देंगे ना, शिव है, शिव की शक्ति हो, गुलजार दादी जल्दी ठीक होकर के अक्टूबर में आ जाए, बाबा को रथ भी चाहिए और माताओं की शक्ति जबरदस्त है। बाबा कहता है माताएं भगवान को बांध के रख सकती है। अभी 10 मिनट है, हाँ 10 मिनट योग भी करे,
7:30 तक
कर सकते हैं, गुड। देखो बहन जी कहती है 7:30 बजे तक करो, हाँ तो अच्छी तरह योग भी चाहिए ना। हाँ, योग करने की एक तरीका और एक बताता हूं, दो तरीके हैं। जानकी दादी का अपना अनुभव बताता हूं आपको। एक दिन हरिद्वार से बहुत बड़े बड़े सन्यासी आए थे, बड़े बड़े 4 सन्यासी थे महामंडलेश्वर, वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने किसी को कहा दादी से मिलना है, तो गेट वालों ने कहा नहीं अभी 2 बज गए, अभी दादी जी नहीं मिलेंगी। तो क्या करे, फिर किसी ने मुझे फोन किया, भाई जी बहुत बड़े सन्यासी है, आप दादी से मिला सकते हैं? हमने कहा हाँ लेके आओ। आए, मुझे पता था दादी का समय, तो दादी ने उनको कोई ज्ञान नहीं सुनाया, अपना अनुभव सुनाया कि मैं कैसे इस यज्ञ में आई, कैसे परिवार सबको छोड़कर कैसे यज्ञ में, अपना अनुभव बताया, कोई ज्ञान नहीं सुनाया। नहीं तो सन्यासी क्या करते, परिवार वालों को छोड़ के जाते। तो दादी ने कहा मैं आई, जब योग करने बैठती थी तो याद आता था परिवार का, तो एक दिन मम्मा को कहा मम्मा मेरा योग नहीं लगता है। अरे बाबा है ना, बाबा को बताओ। तो बाबा ने कहा बच्ची आपका योग लग रहा है, लेकिन आपको योग लगाने नहीं देते हैं। जैसे माताजी इधर बैठी है, योग करने बैठती याद आता है बच्चे स्कूल से आए कि नहीं, ऐसे नहीं, परिवार की याद आएंगी, संबंध है, नहीं चाहते नहीं है। तो योग करने की भी विधि चाहिए, मन और बुद्धि खाली रहेंगे तो इधर उधर के विचार आएंगे, नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना, कोई विचार ही नहीं आना चाहिए। योग अपने आप नहीं लगता, योग लगाना चाहिए, विधि चाहिए। तो एक पहले बताता हूं कि दादी ने जो कहा उनको, तो बाबा ने कहा बच्चे उनके प्रति शुभ संकल्प दे दो। तो कैसे देंगे, अभी आप इधर बैठे योग में, अभी 5 मिनट पहले करो कि बाबा कहते कर्म बंधन को छोड़ दो, कर्म बंधन को काटो। कैसे काटेंगे, हमारे अंदर कर्म बंधन, मैंने कल इसको गुस्सा किया था, इनको दुख दिया था, ये सब याद है, याद आएगा ना कि नहीं आएगा? तो वो कैसे काटे, उनको शुभ संकल्प दे दो। तो अभी देखना 5 मिनट पहले बैठते हैं सभी, आराम से आंखें खोल के, फिर योग कैसे करना विधि बताता हूं, फिर 15-20 मिनट सब मिल करके, एक भी हिलेंगे नहीं, अच्छी तरह से योग करके हमारा संकल्प गुलजार दादी को भी पहुंचना चाहिए, उनको ठीक करके ले आना है ना, और अपने विकर्म भी विनाश करना है, दोनों चाहिए, परिवार को भी सुख शांति मिलनी चाहिए। पहले एक काम करो कि आराम से बैठे आंखें खोल के बैठो, बाबा को इधर देखते बैठना और अपने आप से पूछना कि मैंने बचपन से आज तक कितने किस किस को दुख दिया, किस किस को गुस्सा किया, याद करना। हाँ किया, वो भी करेगा ना, अगर मैंने आपको 100 रुपया दिया तो मांगने आएगा ना, आज नहीं तो कल नहीं तो किसी जन्म में तो आएगा, ऋण है तो ऋण मुक्त कैसे करे। बाबा ने कहा बच्चों का ऋण मुक्तेश्वर हूं मैं, सब ऋणों से मुक्त करने आया, बच्चों के पास कुछ भी नहीं, बाबा से लेके दान करो। तो आराम से बैठे याद करो, हाँ बचपन में 10 साल पहले मैंने इनको गुस्सा किया था, बहुत पता नहीं था बाबा का बच्चा है, आज पता चला अरे भगवान का बच्चा था ये, शिव बाबा मुझे पता ही नहीं था ये आपका बच्चा है, मैंने इनको बहुत दुख दिया, लेकिन आप दया के सागर हो बाबा, इस बच्चे को आप शांति की शक्ति देना, इसको शांत करना, मेरा ये ऋण उतारना, है ना, किसको दुख दिया, किसको गुस्सा किया, कोई ना कोई कर्म बंधन है, जब तक ये कर्म बंधन काटा नहीं तो ये पतंग ऊपर उड़ेगा नहीं, है ना। आप कहते योग लगना चाहिए, क्यों नहीं लग रहा, कौन खींच रहा है, कोई परिवार वाले, कोई बच्चे, कोई पति, कोई किसने कुछ बोला, तो ये कर्म बंधन है। तो इसको काटने के लिए 5 मिनट हम बैठेंगे सफेद लाइट में, आराम से आंखें खोल के मन चलना चाहिए, याद करना चाहिए। याद करो, क्या याद करो? एक बाबा को याद करते, एक ज्ञान को याद करते। अभी वो याद करो, मैंने इस जीवन में किसको दुख दिया, किसको गुस्सा किया, याद करो। हाँ किया तो वो कर्म बंधन मिटाना है ना, तो कौन मिटाएगा? बाबा ने कहा मैं कर्म बंधनों से मुक्त करने में आया हूं। तो बाबा मैंने इनको दुख दिया, मेरे मुख से इनको बहुत दुख मिला है, इनको मैंने गुस्सा किया, पता नहीं था ये आपके बच्चे हैं, अब पता चला ये सब आपके बच्चे हैं, बाबा आप इस बच्चे को शांति की शक्ति दे दो, ठीक है, मेरा ऋण उतार दो, नहीं तो ये मेरा ऋण मुझे भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मांगने आएगा। मैंने पैसा लिया दिया नहीं, बच्चा बन के आएगा, आते ही बीमार, 1 का 10 लाख रुपया ले जाएगा कि ऋण है। तब बाबा ने कहा मैं ऋण मुक्तेश्वर, बच्चों का ऋण मुक्ति करने आया हूं। तो कर सकते हो? बैठेंगे, नींद तो नहीं आएंगे, पहले 5 मिनट करना, फिर उसके बाद 15 मिनट सुनाऊंगा बैठ करके तपस्या कैसी करनी है। फिर हम 7:30 बजे के, दादी आज आने वाली नहीं ऐसा लगता है, तो 7:30 बजे तक योग करेंगे अच्छी तरह से, करेंगे ना, कि सुनते रहेंगे, बहुत सुना, कुछ करना भी चाहिए, दान भी देना चाहिए, ठीक है। पहले 5 मिनट करो।
ओम शांति।
अभी आपको बताएंगे कि फिर हम 15-20 मिनट अच्छी तरह से, वह भी बैठे ना, ऐसे अच्छी तरह से तपस्या करनी है। तो कैसे करेंगे? तो बाबा ने सहज विधि बताया, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, सहज तरीका। तो आत्मा के माताजी दिखाई देती मुझको, तो कैसे समझो? तो पूछेंगे ना, माताजी आपका नाम, आप कहां से आए हो, आप क्या करते हो, हाँ अभी आप कौन है समझ में आया है ना, फिर समझने के बाद आपके साथ बात करते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा समझ मेरे से बात करो। तो आत्मा के आवाज वाइब्रेशन ऊपर पहुंचते हैं। अगर शरीर समझ के बैठे हो आप, कितना भी विचार अच्छे करो, वो विचार ऊपर नहीं जाते हैं, कि शरीर का भान है, भारी है, वो नीचे ही रहते थे। आप कहेंगे हमारा आवाज बाबा को पहुंचता ही नहीं है, कारण विधि। तो आज अच्छी तरह से सहज देखो, भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ते हैं। सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है, एक भारत देश है, दो हाथ जोड़ता है। तो आत्मा को भी दो हाथ है, सबको दो हाथ है, देख लो, शरीर को तो है, आत्मा को एक मन और एक बुद्धि। ये मन और बुद्धि को एक करो। कैसे करेंगे, कौन बताएगा? हाँ, आराम से बैठना, अभी अच्छी सुनना। एक है सुनाते रहो मैं, आप सुनते रहेंगे, वो कमेंट्री कहते हैं, मैं कमेंट्री करते रहो, आपको अच्छी नींद आ जाती है। देखो बच्चों को कहानी सुनाओ, सुनते सुनते गहरी नींद आ जाती है, फिर कहता आज अच्छा योग लग गया, क्योंकि कोई विचार नहीं है, नहीं वो नहीं, यहां आपके विचार चलना चाहिए, आपका मन आपका बुद्धि स्वच्छ करना चाहिए, आपके पाव से चलना चाहिए, कि दूसरों के पाव से चलना चाहते हो? नहीं। तब बाबा ने कहा स्वयं को हरेक को चलना है। तो आराम से आंखें खोल के बाबा का इतना बड़ा चित्र देखते बैठना और अपने आप से बात करो, मैं कौन, पूछना। बुद्धि का, बुद्धि के द्वारा जवाब आना चाहिए, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तुरंत कहेंगे हां बाबा ने कहा मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। जवाब आना चाहिए, बुद्धि को यूज करो, नहीं तो बुद्धि के अंदर व्यर्थ विकल्प आते हैं, भटकती बुद्धि। तो यहां बाबा ने इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम ये व्यवस्था है, बच्चे इन दोनों को यूज करो, दोनों पाव से चलो, यहां से परमधाम तक यात्रा है। बैठते ही अपने आप से पूछना मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, हाँ सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में ऐसे दिखाई नहीं देगा, बाहर नहीं है, अंदर है, महसूस। कल बाबा ने बताया था आत्मा को देख नहीं सकते हो, महसूस होता, हाँ अंदर है। मैं इस ब्रकुटी के बीच में सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, आत्मा के 7 गुण है, एक ही गुण याद करो। हाँ मैं जब परमधाम से आया था सत्युग में, तब संपूर्ण पवित्र था, अब मुझे ऐसे बन करके वापस जाना है, पहले थे आज नहीं हो। जब मैं परमधाम से आया बिल्कुल शांत शीतल था, लेकिन अभी नहीं हो, मुझे ऐसे बनना है। ये पुरुषार्थ। तो एक एक गुण है, 7 गुण है, जानते हो, एक एक गुण धीरे धीरे याद दिलाओ, अपने आप से बात करते रहो, मैं कौन, धीरे से, मेरा रूप, फिर मेरे 7 गुण है, एक एक गुण याद दिलाओ। हाँ मैं परमधाम से जब आए थे कितने पवित्र थे हम, ऐसे पवित्र बनना है अभी। जब परमधाम से आए थे कितने शांत शीतल थे हम, ऐसे मुझे अभी बनना है। फिर मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, इस ब्रकुटी में बैठकर आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं। बाबा हम कहता है बच्चे अशरीरी बनो, विधेयी बनो। कैसे बने? शरीर का हिलाना नहीं, अभी अपने आप को पढ़ाओ, अभी आंखों से कौन गया कौन आया इधर उधर नहीं देखना है, मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं, डिटैच, रिलैक्स कहते हैं, डिटैच कहते हैं, अशरीरी बनो। कैसे बने? हाँ आंखों से इधर उधर देखना नहीं, बाबा को एक जगह पर देखते, एक रस स्थिर बैठो, 10-15 मिनट ही है। फिर 5वां, मैं कहां से आया, परम धाम से आया। परम धाम में कौन है? शिव बाबा है। कौन है वो? उनके पास सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्तियां है? आठ शक्तियां मुख्य। एक हमारा बाप पवित्रता का सागर है। बाबा ने कहा बच्चे शक्ति मांगो नहीं, बाप समान बनो, जैसे बाप वैसे बच्चे। सन शोस फादर, ये भगवान के बच्चे हैं। हमारा बाप कैसा है? पवित्रता का सागर। बात करो बाबा, आप कहते परमधाम में आप रहते हो, आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र रहो, आप संसार में आओ पता चलेगा कैसे पवित्र रहना होता है। बात करो बाबा, आपके जैसे मैं पवित्र कैसे बनूं? बाबा सिखाएगा। बाबा ने कहा मैं सिखाने आता हूं, शक्ति भी देगा। बात करो उससे, बाबा आप शांति के सागर हो, कभी गुस्सा नहीं करते हो। बाबा मैं आपका बच्चा हूं, आज के बाद कभी भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बाबा आप सबको ज्ञान सुनाते हो रोज, मैं भी आपके जैसे ही, जो मुझे आप ज्ञान सुनाते हो मैं भी औरों को सुनाऊंगा, आपके जैसे सेवा करूंगा। बाबा आप सबको सुख देते हो, कभी दुख नहीं देते हो, मेरे मैं आपका बच्चा हूं, आज के बाद कभी किसी को दुख नहीं दूंगा, न बोल से, न संकल्प से, न कर्म से। बाबा आप कौन हो? आनंद के सागर हो। बाबा आप ज्ञान के सागर हो। बाबा आप दुख हरता सुख करता हो, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हो। कभी बीमार है कोई हॉस्पिटल में देखने जाते हो, क्यों जाते हो? बाबा इस आत्मा को मुक्ति दे दो, बहुत तड़प है, बहुत बीमार है ना, मुक्ति देता हो। बाबा आप भाग्य विधाता हो, तन मन धन समय स्वास्थ्य कैसे सेवा में लगाओ, औरों को भी आप भी। और बाबा दिव्य बुद्धि दाता, ये आठ शक्ति याद रखना। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता और दिव्य बुद्धि दाता। आत्मा समझ बाबा को याद कर। हमारा बाप कौन? किसी को बताएंगे ना, हमारा पिताजी के पास इतनी जमीन है, ऐसे बताएंगे ना, इतना पैसा है, तो हमारा पिताजी कौन? उसको याद, वो क्या चाहता है? बच्चे मेरे जैसे बनो, यही कहता ना कि बाबा से मांगो, कहता है मांगो कहा कभी नहीं, बच्चे मेरे जैसे बनो, मैं क्या कैसा हूं ऐसे बनो। तब कहेंगे भगवान के बच्चे हैं। ऐसे अभी हम 15-20 मिनट बैठ सकते हैं, सबके मन में एक जैसा विचार चले, नहीं तो कोई मुरली सुन रहे मुरली का विचार कर रहे, कोई इधर देख रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, नहीं। योग सब अभी टीवी में दिखाई देता है, सब एक रस, आंखें खुली हुई, आंखें बंद नहीं करना, एक जगह देखते रहो, कोई आ रहा है जा रहा है किसी का काम नहीं है, देखो एक रस। क्यों? बाबा ने कहा शिव की शक्तियां हो आप, आपके संकल्प इस डायमंड हॉल को एकदम शांत, शांति वन को नहीं सारे विश्व के अंदर आपके संकल्प पहुंचेंगे। अगर अच्छे विचार करते, विचार पहुंचेंगे ना, अगर विचार नहीं करो आप तो कैसे पहुंचेगा? उसको कहते हैं शांति की शक्ति। शांति का मतलब आपके मन में कोई भी देहधारी का विचार 15 मिनट में नहीं आना है, नहीं आने के लिए आपको काम दिया, ये विचार करो तो वो नहीं आएंगे। अगर वो नहीं करेंगे आप, जरूर आएगा, अरे अभी ट्रेन में जाना है, घर में बच्चों को फोन करना है, विचार आएगा। खाली है, खाली मन शैतान का काम करेगा, खाली बुद्धि भटकेंगे जरूर। इन दोनों को काम दे दो, बैठते ही अपने आप से पूछो मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, सबके मन में एक जैसे विचार चले, इसको कहते हैं शांति की शक्ति। ये असंभव को भी संभव कर सकती है, सबकी बीमारी दर्द सबको मिटा सकती है, सब विघ्नों को। संगठित चाहिए, बहुत दफा बाबा कहते हैं सबके मन में एक जैसा विचार चले, ठीक है। तो दोबारा बताता हूं, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? शिव बाबा। कौन है वो? पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। हमारा बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे मुझे करना है। हमारा बाप कौन? भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता। एक एक शक्ति लेकर के बात करो, ठीक है, ऐसे बैठे।